आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, BibleWani.com में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की बाइबल स्टडी में हम सीखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय को, आराधना क्या है। आराधना की परिभाषा, परिचय आराधना की एक सरल परिभाषा देना कठिन है, लेकिन आराधना में दो बातें जरूरी है। पहला, कार्य, हम क्या करते हैं। दूसरा, मनोभाव, कि हम कैसे करते हैं। अनेक धर्मों में सिर्फ कार्य या क्रिया को महत्व दिया जाता है, लेकिन मनोभाव को कुछ महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन मसीही विचार के अनुसार दोनों को एक समान स्थान दिया जाता है। सही मनसा ही सही कार्य को उत्पन्न करता है। आराधना एक व्यक्ति के पूरे जीवन से संबंधित है। आराधना बाहरी दिखावट की कोई चीज नहीं है, लेकिन मन के अंदर की भावना से संबंधित है। कई बार मसीही लोग आराधना को केवल सामूहिक आराधना के रूप में मान लेते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। आराधना एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है। सामूहिक आराधना केवल उसका एक भाग है। आराधना क्या है? आराधना के कई पहलू हैं। पहला, परमेश्वर के महत्व को पहचानने का अनुभव। आराधना परमेश्वर के महत्व को अंगीकार करना है। परमेश्वर परमेश्वर है, क्योंकि वह महान है। यद्यपि परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के विषय में हम समझ सकते हैं, तो भी परमेश्वर हमारे समझ से परे है। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। परमेश्वर का यह स्वभाव हमारे अंदर एक पवित्र भय को पैदा करता है। परमेश्वर के सामने इस प्रकार के भय को प्रकट करना केवल मनुष्य की योग्यता है, और पशुओं में यह योग्यता नहीं है। दूसरा, परमेश्वर की स्तुति करना। भजन संहिता अध्याय 33 आयत 1 और भजन संहिता अध्याय 34 आयत 1 में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य है। जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को जो देना है वह देते हैं। सृष्टि में परमेश्वर के हाथ को हम देख सकते हैं। इजरायली लोग अपने इतिहास में परमेश्वर के काम को देखकर स्तुति करते थे, और हमें भी हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। कई बार हम गीत को चुन लेते हैं ताकि परमेश्वर की स्तुति कर सकें। तीसरा, परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना। भजन संहिता अध्याय 27 आयत 4 में और अध्याय 42 आयत 1 से 2 में ये लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में मिलना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में मिलने की एक लालसा रहती है। इसलिए हमारी आराधना हमारे हृदय की आज्ञा से अंकुरित होना चाहिए। चौथा, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, अगर परमेश्वर को कुछ नहीं दे पाए तो हमारे अंदर कुछ कमी को हम महसूस करते हैं। इसलिए लोग परमेश्वर को कुछ देकर खुश करना चाहते हैं। पुराने नियम में पशुओं और अन्य जीवों को बलिदान के रूप में चढ़ाते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार हमें आत्मिक बलिदान को चढ़ाने की आवश्यकता है। पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 5, इब्रानियों अध्याय 13 आयत 15 और भजन संहिता अध्याय 50 आयत 9 से 14 में केवल स्तुति और धन्यवाद नहीं, लेकिन हमारे पूरे जीवन को, हमारे शरीर और हमारे व्यक्तिगत और हमारे व्यक्तित्व को बलिदान के रूप में चढ़ाना चाहिए। मसीही आराधना का आरंभ, पुराने नियम के स्रोत। ख्रिस्त धर्म का आरंभ इब्रानियों या यहूदी संस्कृति और पृष्ठभूमि में हुआ। इसलिए कई इब्रानी रूप और विशेषताओं ने मसीही आराधनाओं को प्रभावित किया है। पुराने नियम में कई प्रकार की आराधना का वर्णन किया गया है, उसमें से चार ने मसीही आराधना को बहुत प्रभावित किया है। इनको हम मसीही आराधना के स्रोत कह सकते हैं। पहला, सीने घटना। दूसरा, तंबू और मंदिर। तीसरा, यहूदी आराधनालय। और चौथा, पर्व त्योहार। पहला, सीने घटना। निर्गमन अध्याय 19 आयत 24 से। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकालकर सीने पर्वत के पास लाकर एक वाचा बांधी। यहाँ परमेश्वर का लोगों के साथ एक सार्वजनिक सभा हुई थी। इस सभा में कुछ मौलिक बातें हम देख सकते हैं। पहला, यह सभा परमेश्वर के द्वारा बुलाई गई। इसे परमेश्वर की सभा कहा जा सकता है। इसलिए आराधना की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भाग लेने वाले लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हों। कलीसिया, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोगों का समूह। लोगों की जिम्मेदारी, यहाँ कोई भी गूंगा या मूक दर्शक के जैसा नहीं आया, लेकिन सब लोग उस सभा में सम्मिलित होने के लिए आए थे। नए नियम की आराधना में भी लोगों की सहभागिता जरूरी है। परमेश्वर के वचन की घोषणा, यहाँ परमेश्वर लोगों से बात करता है और उनके बारे में अपनी इच्छा को भी बताता है। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनाना आराधना का एक मुख्य भाग है। परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना, निर्गमन अध्याय 19 आयत 8 और अध्याय 24 आयत 8 जो बातें परमेश्वर ने बताया वे सुनने के लिए और स्वीकार करने के लिए लोग तैयार थे। इसलिए आराधना में परमेश्वर के वचन सुनने और उसको मानने की एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वाचा का समर्थन, निर्गमन अध्याय 24 आयत 8 इस वाचा को पक्का करना भी कह सकते हैं। पुराने नियम में बलिदान के समूह का लहू बहाने के द्वारा वाचा का समर्थन होता था और यह बलिदान यीशु मसीह का सर्वोच्च बलिदान की एक छाप की तरह माना जाता है। दूसरा, तंबू और मंदिर। तंबू और मंदिर की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिन्होंने मसीही आराधना की उत्पत्ति को प्रभावित किया है। जैसे कि यहाँ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति होती थी। निर्गमन अध्याय 25 आयत 8 और दूसरा इतिहास अध्याय 6 और 7 पुराने नियम में इजरायलियों की सारी यात्राएं तंबू के द्वारा नियंत्रित किया जाता था और तंबू की गति को बादल नियंत्रित करता था। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, जहां दो या तीन जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रतीकात्मक स्वभाव, तंबू या मंदिर की सभी चीजें स्वभाव में प्रतीकात्मक थी। सब चीजें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही बनाई गई थी। निर्गमन अध्याय 39 आयत 32 और उनके स्थान विधि और मंदिर की सेवा भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार थे। होम बलि, अन्न बलि जैसी बलियां जो लय व्यवस्था में दिखाई देती थी लोगों को परमेश्वर के साथ सहभागिता को दर्शाती हैं, और इन सब बलिदानों को यीशु मसीह के उस सर्वोच्च बलिदान को एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 1 से 14 और अध्याय 10 आयत 1 से 14 में तंबू या मंदिर में सेवा करने के लिए याजक था। वे लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए और अभिषेक किए हुए थे। नए नियम का मंदिर यीशु मसीह ने और उसकी कलीसिया में पूर्ण होता है। यहूदी आराधनालय, मरकुस अध्याय 5 आयत 38, 6 आयत 2, लूका, यरूशलेम के मंदिर के विनाश के बाद यहूदी आराधनालय का प्रारंभ हुआ था। जब यहूदी लोग बेबीलोन और अश्शूर में प्रवेश में गए और उसके बाद वे कई जगह में तितर बितर हो गए थे। इन्होंने अपनी परंपरा और विश्वास को जीवित रखना चाहा और इस उद्देश्य से यहूदी आराधनालय की स्थापना हुई और यह आराधनालय यहूदी समुदाय के शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक केंद्र बन गए। परमेश्वर के वचन का अध्ययन और उसको समझाना आराधनालय का एक मुख्य क्रिया हो गई। लेकिन इस आराधनालय में बलिदान विधियां और याजक आदि बातें नहीं थी। यहूदी आराधनालय की आराधना में तीन चीजें होती थी, विश्वास का समर्थन, प्रार्थना और व्यवस्था का पठन या व्याख्या। मसीही आराधनालय को यहूदी आराधनालय ने बहुत प्रभावित किया है। आज मसीही आराधना में प्रार्थना, वचन का पढ़ना और प्रचार करना आदि के लिए जो महत्व दिया जाता है वह यहूदी आराधनालय के कारण ही हुआ है। चौथा पर्व त्योहार। यहूदियों के कई बड़े और पर्व थे जो मंदिर और घर के जीवन पर केंद्रित थे। साधारण रूप में इतिहास के कुछ पुरानी घटना को याद करने या परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करने के लिए पर्व मनाए जाते थे। पुराने नियम में तीन मुख्य प्रकार के पर्व थे। पहला फसा का पर्व, इजरायलियों के मिस्र देश से कूच करने की याद में मनाया जाने वाला पर्व। दूसरा पिंतेकुस्त, अच्छी फसल मिलने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व। तीसरा तंबू का पर्व, परमेश्वर ने उनके जीवन में जो कार्य किया उसको स्मरण करने का पर्व। पहला फसा का पर्व, यह पर्व इजरायलियों के मिस्र देश से हुए छुटकारे को स्मरण करता है। अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए वे लोग एक एक मेमने को बलि करके उसका लघु द्वार के आलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए थे। फसा का महत्व, यीशु मसीह ने फसा का पर्व मनाने के अवसर पर प्रभु भोज की स्थापना की थी। इसके द्वारा यीशु मसीह ने अपने आप को नए फसा के मेमने की तरह वर्णन किया था। यीशु मसीह ने प्रभु भोज स्थापित करने के बाद अपने दूसरे आगमन तक उसको स्मरण करने की आज्ञा भी दी थी। दूसरा पिंतेकुस्त का पर्व, पिंतेकुस्त का अर्थ होता है 50वां या 50। यह पर्व फसा का पर्व शुरू होने के 50 दिन के बाद शुरू होता था। यह पर्व फसा के मौसम के बाद होता है और इस समय अच्छी फसल के लिए परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद दिया जाता है। इसमें कई जगह से लोग शामिल होते थे। पिंतेकुस्त का महत्व, पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा एक विशेष तरह से उतरा था, इसलिए मसीही कलीसिया का आरंभ उस दिन से हुआ था। तीसरा तंबू का पर्व, झोपड़ियों का पर्व। इस पर्व के दिन यहोवा परमेश्वर ने उनके जीवन में किए कार्यों को स्मरण किया। इन दिनों में लोग घरों से बाहर आकर कुछ दिन तक तंबुओं में रहते थे और व्यवस्था को पढ़ते थे। वे निर्गमन के उन दिनों को भी याद करते थे जिनमें इजरायली लोग तंबुओं में वास करते थे। इन तीन पर्वों में से पहले दो पर्वों ने मसीही आराधना को बहुत प्रभावित किया है। पुराना नियम और नए नियम की आराधना शैली में भिन्नता या अंतर है। बाइबल में आराधना का स्वभाव, इजरायली लोगों की आराधना और उनके चारों ओर के देशों के लोगों की आराधना में भिन्नता पाई जाती है। पुराना समय में अन्य लोग अपने ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए या उससे कुछ प्राप्त करने के लिए आराधना करते थे, लेकिन पुराने नियम में एक वाचा के आधार पर इजरायलियों की आराधना होती थी। यह इजरायलियों द्वारा परमेश्वर की आराधना की जाती थी। परमेश्वर और इजरायल के बीच एक वाचा थी और पुराना नियम की आराधना का उद्देश्य यह था कि परमेश्वर और इजरायल के बीच जो पवित्र संबंध है उसको वे बनाए रखें। लेकिन इसे इजरायल इस उद्देश्य से पीछे हट गया। लेकिन नए नियम की आराधना परमेश्वर ने मनुष्य पर दिखाया, अनुग्रह पर आधारित है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेम और अनुग्रह दिखाया है वह हमें प्रेरित करता है कि हम उसकी आराधना करें। अब परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं की जाती कि उसने हमसे ऐसी मांग रखी है, लेकिन उसका प्रेम ही हमें आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सामूहिक या सामाजिक आराधना का विकास हुआ और एक प्रभु भोज को भी आराधना में शामिल करना शुरू किया गया। प्रारंभिक मसीही लोगों ने शुरुआत से ही धार्मिक विधियों के पालन करना बंद कर दिया था। उनको यह मालूम था कि बाहरी दिखावट से बढ़कर हृदय की भावना को महत्व देना है। नए नियम की आराधना के अनुसार किसी बलिदान या धार्मिक अनुष्ठान से परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलता, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए सबको अनुग्रह मिल गया है। इसलिए आराधना में यीशु मसीह के सारे कामों को याद करते हुए उनके लिए स्तुति और धन्यवाद ही देना है। मसीह केंद्रित आराधना। मसीही आराधना यीशु मसीह में केंद्रित है। हमारी आराधना का केंद्र यीशु मसीह के काम या कार्य है, इसलिए हम आराधना में यीशु मसीह के कामों को शब्दों के द्वारा और कामों के द्वारा याद करते हैं। मसीह केंद्रित आराधना में यीशु मसीह के देह धारण, मृत्यु, पुनरुत्थान और दूसरे आगमन को याद किया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक आराधना। मुख्य रूप में आराधना एक सामूहिक क्रिया है। कुछ लोग यह पूछते हैं कि सामूहिक आराधना की जरूरत क्या है। सामाजिक आराधना हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए मदद करती है। वैसे ही प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन में ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं जो सामूहिक आराधना के महत्व को दर्शाते हैं। पहला, यीशु मसीह मंदिर और यहूदी आराधनालय में जाता था। दूसरा, प्रेरितों और प्रारंभिक मसीही लोग भी मंदिर और आराधनालय में जाते थे। तीसरा, इब्रानियों अध्याय 10 आयत 24 से 25 में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां प्रभु की उपस्थिति होने का वायदा है। पांचवा, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया उन्होंने ऐसा सिखाया, हे हमारे पिता। छठवा, कलीसिया आराधना करने वालों का एक समूह है। कलीसिया एक ऐसा आत्मिक मंदिर है जहां परमेश्वर वास करता है और लोग आत्मिक बलिदान के द्वारा आराधना करते हैं। सातवा, यूहन्ना अध्याय 4 आयत 23 से 24 में परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आठवा, आराधना और वचन के द्वारा हम अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। नौवा, दूसरे मित्र विश्वासियों की संगति में एक विश्वासी की आत्मिक जीवन ज्यादा उत्तेजित होता है। दसवा, सामूहिक आराधना के द्वारा हम विश्व व्यापक कलीसिया का एक भाग बन जाते हैं। ग्यारवा, सामूहिक आराधना में परमेश्वर के वचन की सेवकाई के द्वारा आशीष पा सकते हैं। बारवा, देने के संदर्भ में भी सामूहिक आराधना महत्व को रखती है। दान लाना एक बलिदान है। मसीही आराधना के घटक। एक अच्छी आराधना में कुछ अनिवार्य भाग होते हैं, जैसे पाप का अंगीकार, धन्यवाद देना, प्रार्थना, मनन और स्तुति। पाप का अंगीकार, जब आराधक पवित्र परमेश्वर के पास आता है अपने पाप के बारे में उसको बोध होता है और उस पाप का अंगीकार करने का मनोभाव आ जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति आराधक के जीवन में अपने पाप के प्रति एक भय को उत्पन्न करती है। बाइबल में भी इसके लिए भी कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। पुराने नियम में वेदी के पास सेवा करने जाने के पहले याजक को अपने हाथ पांव धोना जरूरी था, लेकिन नए नियम के अनुसार आराधक का हृदय शुद्ध होना चाहिए। धन्यवाद देना। आराधना एक धन्यवादी मन से होनी चाहिए। धन्यवाद न देना एक बड़ा पाप है। धन्यवाद देना पुराने नियम का एक मुख्य विषय है। इसके लिए भजन संहिता एक अच्छा उदाहरण है। इजरायली लोगों के बारे में एक मुख्य शिकायत यह थी कि वे लोग धन्यवाद नहीं देते थे, वे अकृतज्ञ थे। नया नियम भी धन्यवाद देने की आवश्यकता को बताता है। लूका अध्याय 17 आयत 11 से 19 में 10 कोड़ियों में से सिर्फ एक कोड़ी यीशु को धन्यवाद देने आया। इब्रानियों अध्याय 12 आयत 28 में धन्यवाद के साथ आराधना को लिखा गया है। प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से कई बातें मांगना नहीं, प्रार्थना में मांगने के अलावा पाना और देना भी शामिल है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संपर्क रखना है, परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेलना है। प्रार्थना परमेश्वर से सुनना भी है। प्रार्थना के दो पहलू हैं। पहला, याचना, विनती, आवेदन, हमारी आवश्यकताओं को बताना। दूसरा मध्यस्थता, दूसरों की आवश्यकताओं को बताना। फिलिपियों अध्याय 4:6 में पौलुस बताता है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मध्यस्थता की प्रार्थना की जरूरत क्या है? शमूएल ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूं, तो मैं यहोवा के विरुद्ध पाप कर रहा हूं। पौलुस भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने को प्रोत्साहन देता है। मध्यस्थता की प्रार्थना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे जीवन में भी आशीष का कारण लाता है। चौथा, मनन। मनन में हम परमेश्वर को हमसे बात करने की अनुमति देते हैं। मुख्य रूप से परमेश्वर के वचन के द्वारा मनन होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक आराधना दोनों में मनन जरूरी है। स्तुति, स्तुति परमेश्वर की महानता को समझने के द्वारा होती है। धन्यवाद परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया उससे संबंध रखता है, लेकिन स्तुति परमेश्वर कौन है उससे संबंध रखती है। स्तुति का समय एक ऐसा समय है जब हम अपने आप को और अपनी आवश्यकताओं को भी भूल जाते हैं और सिर्फ परमेश्वर के बारे में, उसका स्वभाव, आश्चर्यकर्म, सुंदरता इत्यादि बातों पर भी विचार करते हैं। आराधना का देशीकरण। देशीकरण का मतलब है एक देसी रूप देना। आज भारत की कई कलीसियाओं की आराधना में पश्चिमी पाश्चात्य शैली को हम देख सकते हैं। यह भारत में आए पाश्चात्य मिशनरियों का प्रभाव है। आराधना का नमूना गिरजाघर आराधना में बैठना या खड़ा होना, आराधना में इस्तेमाल किए जाने वाले गीत, संगीत, बाजे, वाद्य यंत्र इत्यादि बातें पाश्चात्य प्रभाव को दिखाती हैं। ये बातें भारतीयों के इस सोच को मजबूत बनाती हैं कि मसीहत एक विदेशी धर्म है। इस सोच को दूर करने के लिए आराधना का देशीकरण की जरूरत है। भारत में कई कलीसियाओं में हम देशीकरण देख सकते हैं। मुख्य रूप से गाँव की कलीसियाओं में यह बात पाई जाती है। उदाहरण के लिए कई गिरजाघर भारतीय शैली में बनाए गए हैं। लोग अपने चप्पल को उतारते हैं, जमीन पर बैठते हैं और तिरछे पांव बैठते हैं। भारतीय शैली में भजन गाना, भारतीय संगीत, वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम का उपयोग करना इत्यादि भी स्वदेशीकरण के अच्छे उदाहरण हैं।